यथा देहे कौमारं योनं गिरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र निमुज्यति। इस प्रकार से शरीर के भीतर के मां देखते देखते बालक अवस्था से जवान अवस्था होती है, जवान से वृद्ध अवस्था हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरी देह की प्राप्ति हो जाती है जो शरीर पुराना हो गया, तो इसके बाद धीर जो है, ज्ञानी जो है, वे मोहित नहीं होते, मूर्ख लोग ही मोहित होते। तो हम मूर्ख क्यों बने? अरे मूर्खों के सिद्धांत को धारण करके रोए क्यों? तो किसी मनुष्य को किसी के लिए कभी रोना ही नहीं। हमारे तो देखते हुए बहुत से अपने घर में लड़के मर गए, तो जो हमारा छोटा भाई सोजियाल मर गया, और भी घर के वहां बाल बच्चे मरते ही रहते हैं, समझा? हम तो कभी उसके लिए शोक नहीं करते, ये समझते हैं कि ये व्यर्थ शोक करना। तो हरेक माता बहनों को ये ख्याल करना चाहिए कि कोई मर गया तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उसकी आत्मा के उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इसकी आत्मा को शांति मिले, इसकी आत्मा का उद्धार हो, कल्याण हो। ये तो समझो मनुष्य का अपना कर्तव्य है। जीते हुए उसको मदद करना, मरने के बाद भी उसको मदद करना उसकी आत्मा के कल्याण के लिए, और शोक करना तो व्यर्थ है बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ये शोक का विषय भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि वसंति जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। भगवान ने गीता की दूसरी अध्याय के 22 के श्लोक में कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर के दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, इसी प्रकार से ये जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण कर लेता है। जैसे हम लोग कपड़ों को बदलते रहते हैं, ऐसे शरीरों को बदलते रहते हैं। तो पुराने शरीर गए, नए आए, तो उसमें शोक क्या? ये शरीर जैसे पुराना हो गया, नया आ गया, बहुत अच्छी बात है, उसमें चिंता कौन बात की है? जब आपका लड़का उसकी पुरानी गंदी पोशाक थी उसको छोड़ करके नया वस्त्र पहन करके, खूब बढ़िया वस्त्र पहन करके आ गया, तो उसको क्या कोई शोक करता? कभी नहीं। लड़का भी शोक नहीं करता। तो मुझे ठीक है, किंतु ये उदाहरण में थोड़ी ये कमी आती है। क्या? कि लड़का जन्मता तभी दुख होता है, मरता तभी दुख होता है। नए कपड़ों को पहनते हैं तभी सुख होता है, पुराने को निकालते हैं तभी सुख होता है। तो ये उदाहरण कैसे समीचीन रूप से मिला? देखो ख्याल करते, जो 1 साल का लड़का है, माँ उसका कपड़ा मैला हो गया, दुर्गंध आती है, उसके ऊपर टेढ़ा लगा हुआ है, और उसको माँ निकालती है और बढ़िया कपड़ा उसको पहनाती है, तो निकालने के वक्त भी लड़का रोता है और नया कपड़ा पहनने के वक्त भी लड़का रोता है, क्योंकि लड़का उस कपड़े के तत्व को नहीं समझ, इसलिए रोता है। जो समझदार लड़का है वो तो खुशी के साथ में पुराने वस्त्रों को निकाल सकेगा, नया पहनेगा। इसी प्रकार से थी, जो संसार में मूर्ख है वे रोया करते, और जो समझदार होते हैं, जिनको ज्ञान है, वे कभी नहीं रोते, वे तो हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, वाह एक प्रकार से वे तो हंसते हैं, खूब खुश होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो दूसरी बात बताई जाती है, ये चर्चा कई दिन से चलती है कि एक या अपने समाज के मां बहुत बुरी प्रथा है, या कलयुग में चली। कल हम हाथी बाबा के यहाँ गए थे, हाथी बाबा ने कहा कि कलयुग जो है 3 जगह आकर के डेरा किया है। हाथी बाबा के शब्द हैं कि एक तो तीर्थ स्थानों पर, और एक हम लोग साधुओं के ऊपर, और एक ब्राह्मण के। हमने पूछा कैसे? बोले ये साधु होकर जो चेलियां बढ़ाते हैं, ये नर्क में नहीं जाएंगे तो क्या स्वर्ग में जाएंगे? तो कुमार ठीक बात कही आपने। हाँ, और क्या करेंगे? इसी प्रकार से थी, ये एक तीर्थों के बीच के मां जो है, जो रहते हैं मंडोर रहते हैं, तो वे एक प्रकार से आए हुए आदमी को ठगते हैं, उनका जो कुछ वैसे लूटते हैं, हर एक प्रकार से थी। तो ये और क्या कही तीर्थों के ऊपर, ऐसे ही उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कहा, पर अब मैं उसको विस्तार करके नहीं कहूं। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, तो वर्तमान के बीच के मां बहुत सी स्त्रियां एक प्रकार से थी, अपने सुनजो की गुरु बनाती है, और उससे पति के अतिरिक्त दूसरे परपुरुष को और गुरु बना करके दीक्षा लेती है। तो बहुत सी तो यहाँ ऐसे प्रत्यक्ष यहाँ सुने माता देख लो, हम गए थे इसमें समझो कि ये जो भजनाश्रम है और भजनाश्रम के बीच के वहाँ बहुत सी आपांक्षा ने मिली करके इकट्ठी की गई और फिर उसको शिक्षा दी गई। उन्होंने सब ये बात कही कि ये स्त्रियों के वहाँ बहुत सी ऐसी स्त्रियाँ हैं कई एक उसको अपने साधुओं गुरु बनाती है उनके साथ में व्यवचार कर। तो हमने कहा कि इनको तो निकाल देना, इसको तो एक यहाँ बंद रहना चाहिए जो इसका खोज करके पता लगा कर करके। तो ये जो प्रथा है ये प्रथा रसातल को ले जाने वाली। अब देखो ख्याल करके हम बार बार लोगों को सबको पुकार करके कहते हैं कि कोई भी आदमी ने कोई शास्त्रों में बात देखी हो कि जैसे पुरुषों की पाठशाला आती है लड़के जो तो समित पाणी होकर के गुरु के पास में जाकर के ज्ञान लेते हैं, जैसे गीता में बताया है कि तद्विधि पाणी पाते ने परिप्रश्न शेरिया उपदेख संकित है ज्ञान ज्ञानी न सतरती ने, उस ज्ञान को तुम महात्माओं के पास में जाकर के ज्ञान वे ज्ञानी महात्मा तेरे को ज्ञान का उपदेश करेंगे, उनके नमस्कार करके साष्टांग प्रणाम करके प्रश्नोत्तर करके उनकी सेवा कर करके के। तो पुरुषों के लिए ऋषिकुल है गुरुकुल है पाठशाले हैं पहले भी थी अब भी हैं, और समझो कि कुलपति होते थे एक एक ऋषि के 10,000 शिष्य होते थे उसको कुलपति कहते थे। तो समझो कि ये सारा 10,000 शिष्यों का लक्ष्य लेकर के दुर्वासा तो सांस में चला करता था, और भी भूतों के पास नारद मुनि जहाँ जाते 10,000 समझो कि दक्ष प्रजापति के पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। तो ये विद्या है शिक्षा है उपदेश है पाठशाला है, किंतु हमने आज तक सतयुग त्रेता युग द्वापर युग के बीच में कहीं भी ऐसा नहीं सुना कि स्त्रियों की भी पाठशाला थी, स्त्रियों के लिए भी एक प्रकार से थी ये विद्यालय थे कन्या विद्यालय स्त्री विद्यालय विधवा विद्यालय, कभी हमने सुना नहीं देखा पुस्तकों में। अरे किसी ने देखा तो बता रहा हूँ, क्योंकि तुम कहते हो देखो अमुक पुस्तक में शास्त्र के माँ, आजकल के जो वर्तमान के बीच में अपने अपने संप्रदाय के माँ तो चाहे से कोई लिख ले उसको तुम नहीं कहते, किंतु हमारे जो शास्त्र जो है श्रुति स्मृतियाँ जैसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद उपनिषद या दर्शन शास्त्र या एक प्रकार से रामायण गीता भागवत ये सब जो है या इतिहास या पुराण या तुलसीकृत रामायण वाल्मीकि रामायण कोई भी रामायण, तो कहीं भी किसी जगह में ऐसा नहीं कि स्त्रियों को एक प्रकार से पुरुष शिक्षा दिया करते थे या इस प्रकार से उसकी पाठशाला थी, नहीं वो पति के साथ में रहती थी। सीता माता उनको उपदेश दिया गया तो उसके माता पिता ने उपदेश दिया, साफ मनु में लिखा है कि कन्या स्त्री के लिए कि जब तक विवाह नहीं होता है वो अपने माता पिता के अधीन होकर रहे, पिता पास रहे बाहर में नहीं जावा करते शिक्षा के लिए कुल के लिए उपदेश के लिए किसी काम के लिए बाहर में स्वतंत्र कभी नहीं जा, कहीं जाओ तो पिता के साथ, और विवाह होने के बाद में पति के अधीन होकर के रहे, पति से एक कली स्त्री अलग होकर कहीं बाहर में नहीं जा, और पति मर जावे तो पुत्र बल हो सामर्थ्यवान तो उनके अधीन होकर, पुत्र न हो तो अपने पीर में या ससुराल में कोई भी एक प्रकार से घर के आदमी के मोटेरों के पुरुषों के अधीन होकर स्वतंत्र स्त्री नहीं रहे स्वतंत्र तो नष्ट व्यस्त हो जाती। मनु ने कहा पांचवें अध्याय में नौवें अध्याय में जगह जगह शास्त्रों के बीच के वहाँ ये बात है। तो आती श्री रामचंद्र जी महाराज दत्री ऋषि के आश्रम में शिक्षा के लिए गए तो वो भीतर के वहां चलेगी कौन की एक प्रकार से थी जो सीता माता, तो उनकी स्त्री जो है वो उसको शिक्षा देने लगी कि आपने कि स्त्रियों का ये धर्म है उत्तम के ऐसे बस बनवाई सपने वाहन पुरुष जग नाही मध्यम परपति देख ही कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, उत्तम दर्जे की जो पतिव्रता होती है वो तो सपने में भी किसी दूसरे पुरुष का कभी दर्शन ही नहीं करती, सपने में भी जागृत की बात गुरु कुंड रहा सपने के बीच के मां किसी दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं करती, और मध्यम श्रेणी की जो है मध्यम स्त्री वो मध्यम स्त्री किसी को देखा करती है तो कैसे देखती है, वो भी एक प्रकार से थी पिता भाई पुत्र के समान, बड़ों को पिता के समान बराबर वालों को भाई के समान छोटों को पुत्र के समान, मध्यम परपति देख ही कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, ये नहीं एक प्रकार से कोई भी जगह ऐसी बात आई तो हरेक माता बहनों को यह समझना चाहिए। तो बोले कि कोई स्त्री भूल बस किसी को यदि ऐसा गुरु बना लिया तो उसका फिर हृदय से त्याग कर देना चाहिए, ईश्वर से भगवान से कहना चाहिए कि ये मेरे कसूर को माफ करो, क्योंकि उसके तो एक ही पति होना चाहिए, एक पति उसका साक्षात वही पति ही परमेश्वर है, पति तीर्थ है, पति व्रत है, पति सर्वस्व है, और पातिव्रत धर्म से जितनी उसकी शक्ति योग्यता आती थी, एक योगी की शक्ति उतनी नहीं आ सकती, पातिव्रत धर्म के प्रभाव से पति सहित वो परम गति को प्राप्त हो जाती है। दीर्घा नाम की कोड़ी एक स्त्री थी और वो पातिव्रत धर्म का पालन उसने किया तो पति के सहित परम गति को प्राप्त होगी। शुक्ला नाम की पतिव्रता स्त्री थी, वो पति के सहित समझो कि अपने परम गति हो गई, उसके घर के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश आए, ये पद्म पुराण में कथा आती है, और उसका पति भी बड़ा धर्मात्मा पुरुष था, उसके पति ने पूछा कि आप लोग जो हमारे घर पर साक्षात आकर के दर्शन दिए हैं, ये मैं जो धर्मात्मा हूँ ये मेरा प्रभाव है या मेरी स्त्री जो पतिव्रता उसका प्रभाव है? उन सब देवताओं की तरफ से इंद्र खड़ा होकर के कहता है कि तेरी जो स्त्री जो पतिव्रता है उसके प्रभाव से मैं, तेरे प्रभाव से नहीं। तो आप सोचो कि पातिव्रत धर्म का कितना भारी प्रभाव है। अनुसुईया जो है अत्रि ऋषि की स्त्री, उसके प्रभाव से थी, भगवान उसके घर में जाकर अवतार लिया ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। ये जो एक प्रकार से थी देव की जो पतिव्रता थी, उसने पूर्व जन्म के मां भगवान की भक्ति करी थी और ये वरदान मांगा था कि मेरे आप अवतार लो, तो देव की के यहाँ श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जसोदा के यहाँ पुत्र रूप से रहे तो जसोदा के कल्याण में शंका ही क्या, मैं देखू कि जसोदा की धूली के मां समझो कि मुक्ति बात करे, जसोदा की तो बात ही क्या है। तो जिस स्त्री के भगवान पुत्र पैदा हो जावे उसके कल्याण में क्या शंका है। भगवान ग्वाल बालों का रूप धारण करके और समझो कि गोपियों के यहाँ जाकर के अपने लड़का बड़के के दूध पिया कर रहे थे, वात्सल भाव से थे, अनेक रूप धारण कर लिए थे, उन गोपियों का सबका उद्धार हो गया। श्री रामचंद्र जी महाराज ने कौशल्या के अवतार लिया तो फिर कौशल्या के अवतार में कोई शंका है? क्योंकि एक महात्मा पुरुष अवतार उसके घर के वहां ले तो उस माँ का कल्याण हो जावे, शास्त्र बताता है कुलंग पवित्रंग जननी कृतार्था वसुम धरा पुण्यवती चतेर अपार सम्मित सुख साग रईस्विन लीने पर ब्रह्मनिश्चित है। कहते हैं कि उसका कुल पवित्र हो जाता है, किसका? कि जो महात्मा जो पुरुष है वो जहाँ एक प्रकार से कुल में पैदा हो गया, जिसका मन परब्रह्म परमात्मा के बीच के मां मुग्ध हो गया है, जिसके आनंद का पार नहीं है, जैसे सागर के मां जल का पार नहीं, ऐसे जिसके आनंद का पार नहीं है, ऐसे आनंद सागर के मां डूबा हुआ रहता है, ऐसा जो महात्मा पुरुष है उसका कुल पवित्र हो जाए, क्योंकि उसके दर्शन से भाषण से सब से वार्तालाप से कुल पवित्र हो जाता है। और जन्म के देने वाली माँ तो एकदम मुक्ति हो जाती है, और जहाँ उनके चरण टिकते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है। ये तो एक महात्मा की बात है, फिर परमात्मा की तो बात ही क्या, भगवान जी अवतार ले, जब भगवान या कृष्णचंद्र जी ने ब्रज में अवतार लिया तो ब्रज की तो भूमि की जो रज है इसके मां मुक्ति बात करें, भगवान ने अयोध्या में अवतार लिया तो अयोध्या तो नगरी मुक्ति के देने वाली होगी, सर्जो मुक्ति के देने वाली, इसी प्रकार से जमुना मुक्ति के देने वाली या भूमि मुक्ति के देने वाली, जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान एक प्रकार से उसके प्रकट हो सकते हैं। भगवान की भक्ति करने से ईश्वर की भक्ति में सबका अधिकार है। विदुर जी की जो स्त्री है तो एक प्रकार से भगवान की भक्ति भी करती थी और पतिव्रता भी, तो इस तरह से थी, जो एक प्रकार से स्त्री जो है पतिव्रता भी हुए भगवान की भक्ति करे तो और उत्तम बात है। भगवान की भक्ति जो है तो उसके पति को भी करना चाहिए, उसकी स्त्री को भी करना चाहिए, और पति के जो माता पिता है उस अपने स्त्री के माता पिता के ही तुल है, सास ससुर है तो माता पिता के ही तुल है, पति का जो गुरु है स्त्री के लिए वो गुरु ही है। इंद्र जो है इनके गुरु बृहस्पति, तो इंद्र के गुरु बृहस्पति जो बृहस्पति इंद्र जो एक प्रकार से थी इससे अपने ब्रह्म हत्या से डर करके कमल के वन में जाकर के छिप गया था, तो उस समय के मां राजा नहुष को जो है राजा नहुष को वहां इंद्र बनाया। अब इंद्र बनाया तो एक प्रकार ऋषि और महात्माओं ने उस इंद्र बनने के साथ ही उसके समझो कि आपने अहंकार आया, अभिमान आया और यह कि हो इंद्र की स्त्री मेरी स्त्री, तो उसने इंद्री केसरी के पास को आकर भैया कि मैं तुम्हारे महल में आऊंगा, क्यों विषय भोग करने के लिए? अरे राम राम राम, मैं तो एक प्रकार से सच्ची हूँ, मेरा सच्ची नाम है, मैं इंद्री की स्त्री हूँ, मैं कोई बेसा नहीं, मैं कोई अप्सरा नहीं, मैं तो एक पतिव्रता हूँ, मैं दूसरे पति को कैसे छू सकती हूँ? ये कोई गद्दी पर आप मालिक हो कि भाई केसरी पर मालिक हो? उसने कहा कि नहीं, मैं तो बलात्कार करूंगा तुम्हारे साथ में, हमारी तुम बात नहीं मान। तो उसके पति माने सब देवताओं का गुरु जो बृहस्पति है, समझा, अब पति के गुरु के पास में गई, क्योंकि पति का गुरु तो उसका ही गुरु। या कहा कि देव गुरु देवताओं गुरु, या कहा महाराज मेरे में ये आपत्ति आई। बोले बेटे तू डर मत, विचार मत करना, तुम उसको कह दो कि तुम जब तीनों लोगों पर मालिक हो गए, ऋषि और देव तो सब पर मालिक हो, तो मेरे महल में आ पाते हो ना, तो सब ऋषियों की पाल क्यों जुड़ा कराओ, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो उसने कुहा भेजा कि आप मेरे महल में आना चाहते हो तो आ सकते हो एक प्रकार से, किंतु आपका तीनों लोगों पर अधिकार हो गया तो सब ऋषियों को पाल के जोड़ करके लो। वो तो अंधकार में था ना, ऋषियों को बुलाया कि चलो मैं इंद्राणी के महल में जाऊंगा, तुम मेरी पालकी को ढो। ऋषियों ने सोचा इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो, अरे एक तो परस्त्री के पास जाना, अरे फिर हम लोगों को कार्की जोड़ना, पर अब इसकी बुद्धि जो नष्ट भ्रष्ट हो गई है, जब तक ये राजा है तब तक इसकी बात हमको माननी चाहिए कि हम लोगों ने इसको राजा बनाया है, और एक प्रकार से इस वक्त कायदे के वहां है। तो ऋषियों ने लाकर पालकी हाजिर कर दी, बोले बैठो, लेकर चलने लगे, और उसके काम एकदम दीपन हो गया शरीर में, और बोले जल्दी चलो। तो आखिर में अगस्त के ठोके मार के शीघ्र सर्प, सर्प नाम चलने का संस्कृत में, तो बोले शीघ्र सर्प, सर्प नाम सांप का भी, तो उसी वक्त वो साफ होकर के पालकी से गिरने लगा। जब हाथ जोड़ लिया, महाराज मैं बड़ा अपराधी बड़ा पापी हूँ, मेरे अपराध को माफ करो, मैंने एक तो परस्त्री के पास में जाने का विचार किया ये अपराध किया, और फिर ब्राह्मणों को पालकी के जोड़ा ये पाप किया, तीसरा फिर आपके लात मारी, तो आप दयालु हो मेरे अपराध को माफ करो। बोले हमारा वचन मिथ्या नहीं होगा, तुमको साफ होकर के रहना पड़ेगा, किंतु खैर तुम जब प्रार्थना करते हो तो मैं दया कर दी कि तुम्हारे कुल में राजा ऋषि होंगे, और उनके दर्शन से वार्तालाप से समझो कि तुम इस पापों से मुक्त होकर के अपने छूट जाओ, मुक्त हो जाओ। तो उसके बाद के बीच के मां जो महाभारत के वर्ण पर्व में कथा आती है कि राजा जो युधिष्ठिर जो हुए, तो राजा युधिष्ठिर वन में घूम रहे भीमसेन को ढूंढते हैं, क्यों भीमसेन बहुत देर से आया नहीं, फल मूल लेने के लिए गया था, तो जाके क्या देखते हैं कि पहाड़ के समान जो अजगर सांप है उस भीमसेन को पकड़ रखा है। बोला भाई भीम, क्या तुम अजगर के वश में हो गए? तुम्हारे में दशरथ धारातियों का बल है। हाँ बोलो महाराज, है तो सही, किंतु यहाँ मैं मात हो गया, ये मालूम नहीं कि ये देवता है, कोई यक्ष है या सिद्ध है, कौन है ये सर्प के रूप के बीच के मां? तो सर्प से कहा कि हे सर्प, मेरे भाई भीमसेन को छोड़ दो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे अधिकार में जो आ जाता उसको खा जाते, अब तुम भी एक प्रकार से यहाँ रहोगे तो हमारे अधिकार में आ जाओगे, यहाँ से चल दो तुम, और तुम्हारे भाई को हम नहीं छोड़ेंगे। बोले किसी सर्प पर छोड़ सकते हो? बोले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो तो हम छोड़ सकते। तो बोले पूछो। तो उन्हें धर्म के विषय में बहुत सी बातें पूछी, सब बातों का उत्तर दिया। ये कथा महाभारत के वन पर्व में आती है, विस्तार से आप देख सकते हैं। तो उसके बाद के बीच के वह सर्प जो है एक प्रकार से उस सर्प की योनि को छोड़ करके, और उसमें एक दिव्य ज्योति निकली, और आकाश में देखा तो एक दिव्य ज्योति के रूप में, एक देवता के रूप में कोई ज्योति दिख रही है। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ पूछा कि महाराज आप कौन है? मैं जानना चाहता हूँ कोई आप देवता हो या कोई सिद्ध हो या कोई यक्ष हो या कौन हो आप? तो उन्होंने कहा कि मैं नहुष नाम का राजऋषि था, और मैं स्वर्ग को गया था इंद्र की गद्दी खाली देख कर करके, और मुझको राजा बना दिया था ऋषियों ने और देवताओं ने, मैं राजपद को पाकर के मेरे उद्माद पैदा हो गया था, मैंने एक बड़ा भारी अभिमान पैदा हो गया था, उसके कारण से मैंने पाप किया कि परस्त्री के पास में गमन करने का विचार किया, और अपने ऋषियों को पालकी के लगाया और अगस्त का लात मारी, इससे हमको साफ हो गया तो कि तू सर्प हो जा। मैंने बहुत प्रार्थना की, अनुनय विनय किया, तो उन्होंने दया करके के ब्राह्मण बड़े दयालु होते हैं, तो उन्होंने दया करके के हमारे को ये कहा कि तुम्हारे कुल के बीच में राजा युधिष्ठिर होंगे, उनके दर्शन भाषण और वार्तालाप से तुम मुक्त हो जाओगे। तो हे महाराज युधिष्ठिर, आपके दर्शन के प्रभाव से, आपके साथ में वार्तालाप के प्रभाव से मैं सब पापों से मुक्त हो गया। अरे उस लोगों को जाना, इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि महाराज युधिष्ठिर का कितना भारी प्रभाव था ये, और ये भी शिक्षा लेनी चाहिए कि वो एक प्रकार से देवता की स्त्री, इंद्र की स्त्री, एक प्रकार से अपने पति के वियोग में, पति जब चला गया है तो समझो पति के वियोग में, पति मरा नहीं किंतु जब उसका वियोग हो गया वर्षों के लिए तो मरने के समान ही हो गया। तो इस वास्ते वह अपने पति के गुरु के पास में जाकर के प्रार्थना करी, उन्होंने जो उपाय बताया वो किया। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि पति के जो माता पिता है वे तो अपने सास ससुर माता पिता गुरु ही, इसी प्रकार से थी जन्म के देने वाले माता पिता वे भी ये सो गुरु ही, इसी प्रकार से थी जो अपने पति के जो पूज्य वो अपने पूज्य ही, तो उसको कोई एक प्रकार से थी पति को छोड़कर अलग कोई गुरु बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, तो एक प्रकार से थी अपने नीचे दर्जे की चीज, नीचे दर्जे की चीज। पति जिस भगवान के नाम का जप करता है उसका जप करना चाहिए, पति जिस रूप का ध्यान करता है उसका ध्यान करना चाहिए, पति का जो इष्ट है वो स्त्री का इष्ट, पति का जो कुछ है वो उसका है। ये बात तो जगह जगह हम लोगों को शास्त्र के मां मिलती है, किंतु ये कहीं हमारे को ऐसा नहीं मिलता कि स्त्रियों का झुंड कहीं एक प्रकार से समझो कि आपने कोई पाठशाला में पढ़ा करता था, या स्त्रियां अपने पति को छोड़कर के किसी दूसरे को जाकर के गुरु बनाया करती थी। पति के जो पूज्य वो स्त्री के भी पूज्य, तो हर एक माता बहनों को ये कभी तो भूल करके नहीं करना चाहिए। और जिन स्त्रियों ने कोई ऐसी बात कर ली हो या समझो कि दूसरे पति को गुरु बना लिया हो तो उसको हृदय से उसका त्याग कर देना चाहिए, उसका कभी उस मंत्र का भाव का उसका भोली भाली स्त्रियों को ये एक प्रकार से समझो कि दीदी बना लिया करती, ये बहुत स्त्रियों में घट जाती। अभी की बात आपको कहना होगा कि हमारी स्त्री जो कि कल की बात है, कल की प्रसंग जी समझे ना, उसने कहा कि मैं जब कुंवारी थी तब मेरे घर वाला जो है तो ले जाकर मंत्र के वहां एक का मंत्र दिला दिया था, बोले की पुरगा से, तो फिर बोले फिर तो आपकी सब बातें सुनू मतलब सब छोड़ छाड़ दिया उसको, न कोई मंत्र दिवती न कुछ का कुछ भी समझ नहीं है मेरा उसकी, पर तू बताऊ की दोस्त मेरे आया था। ये अब की बात है हमारे घर की, बुझे बैठी होते यहाँ, हाँ यही बात सुनी तो बोले मैं तो छोड़ छाड़ दिया। तो इसी प्रकार से उसका यही उपाय है कि छोड़ छाड़ करके आपने कह दिया क्या करे गुरु, बोले थूक दिया गुरु। तो स्त्रियों के लिए जो है तो भोली भाली जानती नहीं है, उनको एक प्रकार से थी इस प्रकार से थी लोग है तो कर दिया करते, ये हर एक स्त्रियों को कर देते। अब जब से हम खड़े हुए हैं हमारी जो बात कही जाती है कि ये बिल्कुल बात है किसी को नहीं करना चाहिए, बहुत से लोग हमारे से लड़ते हैं, वो जिनका हानि होती है ना स्वार्थ के बीच में, वो साधु हो चाहे ब्राह्मण हो जिनका हानि होती है तो वो एक प्रकार से इतराज करता है, इतराज करता हम शास्त्र आज्ञा धरते हैं जाओ, कोई हमको पाठशाला बताओ कि पूर्व के बीच में सज्जुग त्रेता युग जुआ प्रतिगुण, हम कलयुग की बात नहीं मन हजीबाब ने हमको सिखा दिया कि बोलो कलयुग के बीच के मन तो कली का धर्म है, कलयुग में तो ऐसा होगा ये अभी कुछ नहीं है, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी श्रुति विरोध लग सब नर नर, इसमें न वर्ण लगा न धर्म लगा न श्रुति न वेद न पुराण सबके विरोध के बीच के मन सब चलेगा। तो इसको एक प्रकार से थी ये तो कलयुग है, कलयुग इस कलयुग के बीच के वहां कोई धर्म कर्म कुछ नहीं, तो नहीं है जड़ नहीं है, किंतु एक प्रकार से थी हम लोग जो धर्म को मानने वाले हैं वे अपने धर्म के बाहर क्यों जावें, लेकिन जहां तक पालन करना चाहिए हम क्यों उसके बारे में जावें। तो ये दूसरी बात एक प्रकार से माता बहनों को बताई। अब और एक बात बताई जाती है कि ये जो एक प्रकार से थी रोग है, बीमारी है, मृत्यु है, इसके विषय में हमको ये विचार करना चाहिए कि ये अवश्य भावी भोगना ही पड़ता है कि इसका कोई प्रतिकार भी है, बोले प्रतिकार के रूप में भोग लो, हर चाहे उस किसी रूप में भोग लो। जैसे हमारे बीमारी हुई, हमने कोई पाप किया उसके फल स्वरूप हमारी बीमारी हुई, हमारे लड़के की बीमारी हुई, हमारी लड़की की बीमारी हुई, तो वो बीमारी के रूप में हम क्या कर रहे हैं, पाप हो गए। और जिस समय में हम पाप करते हैं उस समय उस पाप का प्रायश्चित कर दे, जो शास्त्रों में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया है उस प्रायश्चित को कर दे, तो प्रायश्चित के रूप में वो एक प्रकार से भोग हो गया, प्रायश्चित के रूप में भोग हो गया। आपका हमारे ऊपर ऋण है, कोई भाई ने हमको 10,000 रूपये दिए तो उसका 10,000 रूपयों का हमारे सिर पर ऋण है, तो वो 10,000 रूपया हम उसको वापिस दे दे तो ऋण से मुक्त हो जाए। हम कहते भाई हमारे पास रुपया तो नहीं है, हमारा मकान ले लू तो मकान दे दिया तो भी ऋण से मुक्त हो गए। बोले मकान भी नहीं, रुपया भी नहीं, गहना भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो हम हैं, हम आपकी चाकरी करा लो, तो हमारे से चाकरी करा लो। तो उसके चाकरी करके नौकरी करके के समझो उसके रुपये पटा दिए तो भी पट गए। तो इसी प्रकार से हम पाप कर करके के और बदले के बीच के मां समझो कि एक प्रकार से प्रायश्चित कर ले हुए, तो वो जैसे नौकरी करके रुपया पटाना, ऋण से मुक्त होना, इसी प्रकार से पाप से मुक्त होना है। इसी भी रूप में इसी प्रकार से समझो कि भगवान का भजन करके ध्यान करके भी हम उस पाप को नष्ट कर सकते हैं, तप के द्वारा भी नष्ट कर सकते हैं, जब से तप से एक प्रकार से तीर्थों से सब पाप नाश हो जाते हैं, जब करने से तप करने से तीर्थ करने से इत्यादि से पापों का नाश हो जाता है। तो कौन से पाप नाश होते हैं कि इनसे संचित पापों का नाश हो जाता है। क्रियमान क्रियमान के बीच के मौसम जो फलाशक्ति का त्याग करके कर्म करें तो क्रियमान लगता नहीं, तक्तवा कर्म फलासंगन नित्यवतो निराश्रय कर्मण्य कर्मण्य भी प्रवर्तो की नैव केंद्रित करो। तीसरा जो मनुष्य कर्मों के बीच में फल और आसक्ति को त्याग करके और समझो कि संसार और कर्मों के आश्रय से रहित होकर के और परमात्मा के ध्यान में नित्यपद है, ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है, नहीं किंचित करोते से किंचित मात्र कुछ भी नहीं करता, करता हुआ भी। तो एक प्रकार से थी समझो कि क्रियमाण जो हमारे कर्म है, हम जो वर्तमान में जो कुछ कर्म कर रहे हैं उसमें फलाशक्ति का त्याग कर देवे तो ये कर्म हमारे लागू नहीं पड़ते। इसी प्रकार से थी इससे न हंकता हुआ बुद्धि न लिपते ईमान लोग का न हंगते न निबद्धते, वो पहला का जो श्लोक बताया वो समझो कि गीता की चौथी अध्याय का 20 का श्लोक था और ये बाद में बतला रहे हैं ये 18वीं अध्याय का 17 का श्लोक है। वो कर्मयोग की दृष्टि से था, ये ज्ञानियों की दृष्टि से कहते हैं कि जिसके हृदय में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसके हृदय में कर्ता अपने का अभिमान नहीं है और जिसकी बुद्धि समझो कि अपने आसक्ति करके के स्वार्थ करके लिपायमान नहीं होते, ऐसा पुरुष संपूर्ण लोगों को मार करके भी किसी को नहीं मारता है, उन्हें पाप से बंधता है। तो क्रियमाण कर्म हमारे इस प्रकार से लागू नहीं पड़ते। अरे प्रारब्ध कर्म, तो प्रारब्ध जो कर्म है उसका भोग अवश्य करके भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध क्या है कि जैसे एक समझो कि हमारे घर के वहां अनाज पड़ा है और उस अनाज के मास में एक मुट्ठी अनाज हम एक प्रकार से खेत में जाकर के उसको बो दिया यानी बा दिया और वो अनाज खड़ा हो गया, उसकी गाछ हो गई, समझो कि गेहूं बाया तो गेहूं, जो बाया तो जो जो का गेहूं का चनों का गाछ पैदा हो गया। अब उसके तो जो कुछ गाछ पैदा हो गया, अब उसका और दूसरा कुछ होता नहीं, उसके तो गाछ हो गया, तो गाछ के रूप में उसकी जितनी आयु समाप्त हो गई आप भी समाप्त हो जाएगा। किंतु हमारे पास में और बहुत सा अनाज पड़ा है, उसको हम भोजन करके अपने शरीर की पुष्टि के काम में भी लगा सकते हैं, उसको आग में जला भी सकते हैं और उसको फिर चाहो तो बा भी सकते हैं, उसको चाहे जिस प्रकार से उसको नष्ट भी कर सकते हैं और आगे ने बा भी सकते हैं। तो संचित कर्म तो उस संचित अनाज की जो है,